अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, महबूब और स्नेहा की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। एक बार फिर से हमारे शो में आपका स्वागत है। हम सोच रहे थे इस हफ्ते किस पर बात करें, फिर सोचा कि क्यों ना आपको एक सफ़र पर ले चलें। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, सफ़र उस जगह का जहाँ सबसे बड़े सहर और इफ्तार के दस्तरखान लगाए जाते हैं, जहाँ अमीर और गरीब एक सफ में होते हैं और जहां सारी दुनिया से लोग जमा होते हैं कि इस खूबसूरत महीने को सबसे बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए। तो स्नेहा, आप गैस कर सकते हो मैं किस जगह की बात कर रहा हूं?
मुझे तो पता है, क्या आप लोगों ने गेस किया? ये कोई और नहीं लेकिन पाक जमीन मक्का और मदीना की बात हो रही है। वैसे जब हम रमज़ान की बात करते हैं, जो पहली चीज़ हमारे जहन में आती है रोज़े, नमाज और अच्छे आमाल के अलावा, वो है लजीज और स्वादिष्ट खाने। और जब बात करते हैं सऊदी अरेबिया के लजीज खानों की, पहला नाम जो हमारे मुंह में पानी लाता है वो है अलबैक। अलबैक सऊदी अरेबिया में उससे भी ज़्यादा मशहूर है जितना KFC सारे यूरोप और बाकी सारी दुनिया में है। ये मशहूर रेस्टोरेंट्स की चेन जो सऊदी अरेबिया में है, अलबैक, ये हमारे आज का विषय है और हम इसकी कहानी और कामयाबी का राज आप लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले महबूब, आप हमें बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा था अलबैक के साथ पहली बार?
मैं पहली बार अलबैक 2015 में गया था अपने प्यारे ब्रदर इन लॉ जोएब के साथ। मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है वो घंटों लाइन में खड़े रहना। इंतज़ार करते हुए मैं और जोएब सोच रहे थे कि ये सब लोग और हम भी इतना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ खाना खाने के लिए। फिर भी हंसी मजाक करते हुए हम इंतज़ार करते रहे, क्योंकि हमने सुना था आप सऊदीया गए और अलबैक ना खाया तो आपने क्या खाया। लेकिन जब हमने फाइनली टेस्ट किया तो पता चला इतना इंतज़ार तो बनता था। अलबैक जो एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था ब्रोस्ट और उनकी सॉसेस का, और वो इसी की वजह से मशहूर भी था। कई बार अलबैक के बाहर रश देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई कॉन्सर्ट का क्राउड है। लोकल ब्रांड से इनका तो कंपटीशन था ही, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड जैसे KFC और मैकडॉनल्ड्स भी अब वहाँ मौजूद हैं। मगर देखने वाली बात यह है कि इतने सालों से वो कैसे इन बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं। आए इनकी कहानी सुनते हैं।
ये कहानी शुरू होती है 1974 में जद्दा के शहर से, जो कि सऊदी अरेबिया में है। अलबैक के मालिक शकूर अबू गजाला ने सबसे मशहूर रेस्टोरेंट की चेन खोलने का ख्वाब देखा था। उन्होंने देखा कि यहाँ पर ज़रूरत थी अच्छी क्वालिटी के सस्ते रेस्टोरेंट की जो साफ़ सुथरे माहौल में हो। उन्होंने अपनी मेहनत की सारी कमाई इस प्रोजेक्ट में डाल दी और एक विदेशी कंपनी से एग्रीमेंट करके वे सऊदी अरेबिया में ब्रोस्ट चिकन बनाने वाले पहले रेस्टोरानियर बने। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। अबू गजाला के सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए जब 5 महीनों के बाद, August 14, 1976 को, वो अपनी ज़िंदगी की जंग कैंसर के हाथों हार गए और 48 ईयर्स की उम्र में वो चल बसे। और तब आया अलबैक की ज़िंदगी में एक गहरा मोड़। एहसन और रामी अबू गजाला के दो बेटे थे और अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद रामी को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए छोड़कर एहसन खुद मजबूरी में अपनी ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी छोड़कर जद्दा वापस लौट आए, खासकर अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए और इस नए बिजनेस को डूबने से बचाने के लिए। एहसन ने कहा, मेरे पिता की अचानक मौत की वजह से हमने एजेंसी के सारे राइट्स खो दिए और हमें शुरू से शुरू करना पड़ा। जब तक एहसन इस बिजनेस का कारभार संभाला, तब तक यहाँ करीब 400 ऐसी कॉपी रेस्टोरेंट्स बन चुके थे और हमें कुछ ऐसा करना था जो हमें इन सब से अलग करता और ये फ़र्क हमारी क्वालिटी और प्राइस से बन सकता था, एहसन ने कहा। और फिर
रामी ने ग्रेजुएशन के बाद एसन के साथ कारोबार ज्वाइन कर लिया। रामी का कहना था, हमें रेस्टोरेंट की फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता था और ये भी नहीं पता था कि स्टार्ट कहाँ से करें। हम कोई रेस्टोरेंट वाले नहीं, सिर्फ इंजीनियर थे। और फिर मैंने अपने वालिद का तरीका अपनाया, काउंटर के पीछे खुद खड़ा हुआ, खाना भी खुद बनाया, कस्टमर को खुद सर्व किया, सफाई भी खुद की। और दूसरी जगह एसन भाई पेरिस गए फूड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने के लिए। और जब एसन वापस आए, उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 18 खुफिया जड़ी बूटी और मसालों को मिला के एक रेसिपी तैयार की। वो दोनों शाम के औकात में किसी खुफिया जगह पे इसे तैयार करते थे। उन दोनों को पता था, उनको अपनी एक अलग पहचान बनानी है अपने दूसरे कंपेटिटर्स से। तो फिर उन सब ने मिलके एक ब्रांड नेम और लोगो तैयार किया, अलबैग, जिसके मायने हैं पसंद करना। और आखिरकार 1986 में अलबैग लॉन्च हो गया।
और आखिर में यही कड़ी मेहनत, अलग स्टाइल, बेहतरीन टेस्ट, क्वांटिटी और कस्टमर सर्विस के कारण ये सऊदी अरेबिया के एक ऐतिहासिक रेस्टोरेंट बने। इस कहानी से और शकूर फैमिली के एक्सपीरियंस से मैं आप सब बिजनेसमैन से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। चाहे आपका बिजनेस बड़ा हो या छोटा, चाहे आप एक सब्जी वाले हो या बेकरी वाले या किसी करोड़ों की फर्म के मालिक, आप अपने बिजनेस का तरीका, उसके एक्सपीरियंसेस अपने परिवार और खासकर अपने बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आजकल के लॉकडाउन के दौर में आप सबको एक साथ बिताने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है, तो उसको ऐसी क्वालिटी चीज़ों में लगाएं। अगर आप अपने बच्चों को अपने बिजनेस में नहीं जोड़ना चाहते या वो नहीं आना चाहते, फिर भी उनसे अपने बिजनेस के बारे में शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। इससे दो बातें होंगी। पहली तो, अगर अबू गजाला की अचानक मौत की तरह कोई भी इमरजेंसी आपके परिवार पर आती है तो आपको कम से कम आइडिया होगा कि करना क्या है। और दूसरा ये कि जो आप अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं वो उनको बचपन से दे, तो बचपन से उनको आपके बिजनेस में दिलचस्पी पैदा हो और वो आगे जाकर उसको आगे बढ़ाए। या अगर वो किसी और प्रोफेशन में भी जाना चाहें तो वो आपके बिजनेस का तरीका समझ गए तो उसको साइड इनकम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
सही बात है, हमें भी ये प्रैक्टिस अपने बच्चों के साथ ज़रूर करनी चाहिए इंशाल्लाह। अब गौर से सुने, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अलबैग की सक्सेस स्टोरी का बहुत अहम राज है। अलबैग की कामयाब होने के पीछे एक बहुत अहम वजह ये है कि शकूर अबू गजाला हर एक ब्रोस की सेल पर 1 रियाल सदका किया करते थे। और मज़े की बात तो ये है कि उन्होंने इसके बारे में ना अपने बच्चों को ना किसी और को कभी बताया था। वो तो उनके वालिद की अचानक मौत के बाद कुछ फलाई इदारे एसन के पास आए। वो सब बहुत परेशान थे कि अब उनकी मदद कौन करेगा। ये सब जान के दोनों भाइयों ने तय किया कि वो अपने वालिद का ये अजीम काम जारी रखेंगे। इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला है, अपनी सेल का कुछ हिस्सा अल्लाह के तरफ कर दो, अल्लाह इसमें खुद ही बरकत डाल देंगे। हम में बहुत से लोग अब तक शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि अलबैक अपना चिकन ब्रोस्ट 13 रियाल में इतना सस्ता कैसे बेचता है, उनको बचता क्या होगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत कम मुनाफे पे काम कर रहे हैं, शायद शायद इसी वजह से ही उन्हें इतनी बरकत मिल रही है।
अलबैग सिर्फ अच्छा खाना खिलाना या पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों और मुल्क की भलाई के लिए भी है। हर साल हज के दिनों में वो हाजियों के लिए बिना किसी प्रॉफिट पे खाना सप्लाई करते हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान भी अलबैग रोज़ाना के तौर पे जद्दा में 10,000 लोगों तक मुफ्त में खाना पहुँचा रहा है। इसके अलावा भी वो कई सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है, जैसे अलबैग ने 2 कार्टून्स नाजीन और वर्तन बनाए जो दुनिया को साफ रखने का मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अलबैग ने 100 हफ्ते 100 पाक नामक प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया है, जिसमें वो बड़े बड़े पार्क्स बनाते हैं। मेरा स्कूल मेरी जिम्मेदारी इस प्रोग्राम, जिसमें 5वीं क्लास तक के बच्चे अपने स्कूल के आखिरी 15 मिनट अपने क्लासरूम की सफाई में लगाते हैं और इस काम में बेहद गर्व भी महसूस करते हैं।
माशाल्लाह, काश हम भी सब मिलकर अपने मुल्क में ऐसे अजीम काम कर सकें।
तो ऑडियंस, आज की बात को यहीं पूरा करते हुए एक बार अलबैग की कहानी से जो सीखा उसको दोहरा लेते हैं। नंबर एक, अपने आप को लोगों से विभिन्न या अलग बनाना। नंबर दो, एक सिस्टम बनाकर काम करना। और हमारा आखिरी मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं, अपने मुलाजिम, कस्टमर्स और देश की भलाई का भी होना चाहिए। नंबर तीन, अपने परिवार के साथ अपने काम या बिजनेस की नॉलेज को शेयर करना। और आखिरी वाला, जो हमने हमारे पिछले पॉडकास्ट यानी जुनैद जमशेद और अक्षय कुमार की कहानी से भी सीखा, जितना दोगे उतना मिलेगा। इसीलिए अपनी कमाई का या अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, चाहे वो 100 रुपये ही क्यों ना हो, चैरिटी के लिए ज़रूर अलग रखना। बस आज के लिए इतना ही। रमज़ान मुबारक आप सबको। फिर मिलेंगे अगले थर्सडे इंशाल्लाह नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मैसेज आइकॉन पे क्लिक करके हमें बता सकते हैं कि आप हमसे और क्या क्या सुनना चाहते हैं। टिल देन, आप सबको रमज़ान मुबारक। अपना ख्याल रखना और बाय बाय।